себе вече покушат. सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपनी स्थिति को देखो। स्थिति कैसी? रूहानी है या जिस्मानी है? आत्मिक है या देह वाली है? सारे दिन भर में कौन सी स्थिति में आप स्थित रहते हैं? देह समझकर चलते हैं या आत्मा समझकर? बच्चे जब भी देह समझकर चलोगे तो माया इमर्ज रहेगी, मायावी स्वरूप इमर्ज रहेगा और आत्मा परेशान होती रहेगी। बच्चे सदा चेक करते रहो, मूल स्वरूप में, कल्याण के स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में हूं या फिर देह स्वरूप में हूं, मायावी स्वरूप में हूं और अकल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। चेक करते रहो बच्चों। जीवन के दुख का कारण एक ही है, देह अभिमान, देह अभिमानी स्थिति, बॉडी कॉन्शियसनेस। समझो इस बात को। अगर कोई आत्मा शेर के तन में प्रवेश हो जाए और वो आत्मा उस तन के साथ गांव में आ जाए तो क्या करेगी? लोगों को मार डालेगी। कब मारेगी? जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होगी, क्योंकि उसे पता है मैं शेर हूं। और अगर वो सोल कॉन्शियसनेस में है तो वही आत्मा शेर के तन को लेकर गांव का रक्षण करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, संरक्षण करेगी। सोल कॉन्शियसनेस में है। बॉडी कॉन्शियसनेस में स्वाभाविक है बच्चों, वो संस्कार इमर्ज होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, दुख, क्लेश, वो बॉडी के संस्कार है बच्चे, कलयुगी शरीर के संस्कार है। कोई अगर कहे बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कि हम बहुत दुखी है तो बच्चे मूर्खता है, पागलपन है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है बहुत दुखी रहना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर। सोल कॉन्शियसनेस में रहो, देखो दुख आता है क्या? नहीं आता। आत्मिक स्थिति में, देह अभिमानी स्थिति में हो और देह के संस्कार इमर्ज ना रहे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे। देह अभिमानी स्थिति में देह के संस्कार इमर्ज रहेंगे और कलयुगी अंतिम देह के संस्कार क्या है बच्चे? शारीरिक रूप से बीमारी, मन के संस्कार, मानसिक रूप से बीमार, धन के संस्कार, धन के रूप से भिखारी। बस कॉन्शियसनेस का खेल है। पारिवारिक झगड़े, सामाजिक बदनामी, आध्यात्मिक अधोगति, बॉडी कॉन्शियसनेस। स्वाभाविक है बच्चे, यही होना है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी भक्ति करो, दुख ही आएगा। आत्मिक स्थिति में रहकर एक बार भी परमात्मा को याद किया, सुख पाओगे। एक बार भी भगवान को, देवी देवताओं को याद किया, सिर्फ याद किया, सिमरण भी नहीं किया है, सुख पाओगे, परम सुख पाओगे। आत्मिक स्थिति बच्चे, सिमरण करोगे तो कितना जमा होता जाएगा, कल्पना है क्या? आत्मिक स्थिति में जागो बच्चों, चिंता, क्लेश, दुख, दर्द, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उदासी, नाराजगी, सब विकारों के बाल बच्चे, सब कुछ विपरीत बच्चे। तो आना ही है बॉडी कॉन्शियसनेस में। तुम अपने कॉन्शियसनेस में आओ बच्चे, अपने कॉन्शियसनेस को समझो। तुम माता बनकर चल रहे हो तो माता के दुख तो तुम्हें होने हैं, पिता बनकर चल रहे हो तो पिता के दुख तुम्हारे जीवन में आने हैं, पति पत्नी बनकर चल रहे हो दुख आने हैं, बच्चे बनकर चल रहे हो आने हैं, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, बॉस एम्प्लॉय, मालिक नौकर, दुख आना है। बॉडी कॉन्शियसनेस, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में। बच्चों जागो, बॉडी कॉन्शियसनेस में दुख मिलना है बच्चे। देहाभिमान में दुख सदा है, देहाभिमान में रहकर कितना भी पुरुषार्थ करो, दुख मिलेगा ही मिलेगा। दुख से तुम छूट नहीं सकते क्योंकि तुम देह अभिमानी हो। पहले देह अभिमान त्यागो, आत्मा अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आओ। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, बाबा का एक ही सवाल रहता है, क्या आत्मा अभिमानी हो? अपने को क्या समझते हो? तुम कौन हो? समझ है बच्चे, संभल कर चलो। सारा दिन अपनी स्थिति देखो, आत्मा आनंद ले पाती है क्या? जीवन का भोजन का सुख आनंद खुशी, पानी का सुख आनंद खुशी, वस्त्र का, व्यवस्था का, ईश्वरीय पालना का आनंद आत्मा को मिलता है क्या? विचार करो बच्चों, बच्चे कितना बड़ा सुख है तुम्हारे जीवन में। ईश्वरीय सुख तुम्हें लेना चाहिए, आत्मा को, जो सुख तुम्हारा मायावी स्वरूप ले रहा है। बच्चे अपना सुख क्यों गवा रहे हो? जागो, स्मृति में रहो बच्चे, होश में रहो, जागृत रहो। अच्छे विचार करो, अपने से विचार करो, कौन से स्थिति में रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस या फिर सोल कॉन्शियसनेस। जागो, होश में रहो, स्मृति में रहो। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें है उसी प्रकार सोल कॉन्शियसनेस की बात है। सोल कॉन्शियसनेस में तुम रहो और तुम कहो सुख नहीं आ रहे, शांति नहीं आ रहे, नहीं हो सकता। स्वाभाविक है, सारे गुण शक्तियों दिव्य गुणों के झरने शुरू हो जाते हैं सोल कॉन्शियसनेस में रहते ही, तत्क्षण। तुम ना भी चाहो फिर भी सुख आएगा तुम्हारे जीवन में, सोल कॉन्शियसनेस में, ना चाहो तो भी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा जीवन में बहुत समस्या है, अलग अलग प्रकार के उपाय बता रहा हूं ना, सोल कॉन्शियसनेस। हर समस्या में आत्मिक स्थिति में सीट पर सेट होकर देखो और मुझे बताना परिणाम क्या आ रहा है जीवन में। बीमारी हो शरीर की, मन बुद्धि संस्कार का दुख दर्द हो, धन की समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, आध्यात्मिक समस्याएं हो, बस इस अवस्था में स्थित रहकर देखना, देखो क्या होता है। सोल कॉन्शियसनेस। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तुम बस अपने सीट पर सेट रहो, परिणाम देखो। किसी को पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी, कुछ भी शारीरिक तकलीफ, बस अपने सीट पर सेट रहकर देखो। ये तो सत्यावस्था है ना। कोई कहेगा बीमारी में कैसे रहे, तो फिर बच्चे दुख दर्द तो भुगत ही रहे हो ना, बस उसकी जगह आत्मा देखनी, इतना ही फर्क है बच्चे, आत्मा ही तो देखनी है। जागो बच्चों, होश में आओ, अपनी स्थिति में रहो और परिणाम देखो। किसी का शरीर बीमार है, कुछ नहीं करो बच्चों, बस आत्मा समझकर हर निवाला खाओ, चबाओ, उतार दो नीचे पेट में, देखो दवाई कैसे तैयार होती, स्पिरिचुअल मेडिसिन देखो तो सही, ऑरा कैसे हील होता है, सूक्ष्म शरीर चक्र कैसे हील होते हैं। बस अपने सीट पर सेट रहकर अन्न खाया, दवाई भी सीट पर सेट रहकर ले लेना, देखना क्या होता है। और शरीर को जो विश्राम दिलाओगे जितना भी समय सीट पर सेट रहकर, देखो बीमारी का क्या होता है। मन परेशान है, कुछ नहीं करो, सीट पर सेट रहो, थोड़ा समय सीट पर सेट रहो, कम से कम 3 मिनट या उससे ऊपर, 6 मिनट, 12 मिनट, 1 घड़ी, देखो क्या होता है परिणाम। बुद्धि अस्थिर है, सीट पर सेट रहो, संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे, सीट पर सेट रहो, शांति चाहिए सीट पर सेट रहो, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, खुशी चाहिए सीट पर सेट रहो, अष्ट शक्ति, अदिव्य गुण सीट पर सेट रहो। बच्चे तुम समझो इस बात को, सब सीट पर सेट होने से होता है। जब भी तुम सीट पर सेट होते हो, तुम्हारी सारी शक्तियां, सारे गुण इमर्ज रहते हैं। तुम संकल्प करो या ना करो, उन्हें पता होता है मालिक को क्या देना है। अपने आप एक एक शक्ति इमर्ज होकर डिसीजन लेगी और तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। सीट पर सेट हो, एक भी डिसीजन गलत नहीं हो पाएगा, ट्राई करके देखो। जब सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति ही आएगी, जब सामना करने की चाहिए, सामना करने की आएगी, सहयोग चाहिए, सहयोग आएगी, निर्णय चाहिए, निर्णय आएगी, समाने की, समाने की, दृढ़ता, नम्रता, अंतर्मुखता, जो चाहिए आएगा। आप इस बात को समझो, सीट पर सेट होने के बाद ही शक्तियां, सभी शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा से अलाइन होते हैं। अगर आप सीट पर सेट नहीं हो, कितने भी चिल्लाते रहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, कुछ नहीं होने वाला। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सीट पर सेट नहीं हो। और ऐसे नहीं बच्चे की सीट पर सेट हो और ऑर्डर दे दी और उसके बाद सीट भूल गए, ऐसे नहीं चलता बच्चे। सदा सीट पर सेट रहना पड़ेगा, सदा। सीट से उतरते ही क्यों हो बच्चे नीचे? माया है नीचे। सीट से नीचे उतरे कि माया सीट पर आकर बैठे। उतरो मत, उतरे के माया आई, सीट पर सदा सेट रहो। अनुभव करो कैसे सब चलता है। सीट पर सेट होने से दृष्टि कैसे चलती है, वाणी कैसे चलती है, कर्म कैसे होते हैं, अनुभव तो करो। किस प्रकार की बातें तुम सुनते हो, किस प्रकार की दृष्टि, बोल, सब कुछ अनुभव तो करो। सीट पर सेट होकर समझे बच्चे, सीट पर सेट होने में ही कल्याण है। हर अस्तित्व को अपने सीट पर सेट होना चाहिए। सीट से नीचे उतरे कि अकल्याण हुआ। सीट पर सेट रहो सदा। अच्छा तुम आत्मा, तुम अपना सिंहासन छोड़ोगे तो जरूर कोई आएगा वहां बैठेगा। फिर वो मन को किस दिशा में चलाएगा? विपरीत। ज्यादा कुछ बातें नहीं होती बच्चे, तुमने ये आत्मा परमात्मा या आत्मा की गहराई को तुमने बड़ा कर दिया है। तुम्हारा सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन पर तुम बैठते हो। तुम जब नहीं हो, माया भी स्वरूप आकर बैठ जाता है। फिर वो मन को किस दिशा में चलाएगा? विपरीत। मन से ऐसे विचार क्रिएट हो जिस कारण विपरीत वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाए, वो उसका सुख है। मायावी स्वरूप का सुख दुख दर्द में है, आत्मा का सुख सुख शांति में है, राहत में है। तुम इसे समझते क्यों नहीं हो? इंस्ट्रूमेंट एक ही है बच्चे, ऊर्जा उतनी है। या तो मायावी स्वरूप इस्तेमाल कर रहा है या फिर आत्मा। आत्मा इस्तेमाल करेगी तो सुख शांति के दिशा में ऊर्जा का प्रयोग करेगी, और मायावी स्वरूप करेगा तो दुख अशांति के दिशा में करेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चे, मन में विपरीत संकल्प चल रहा है, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है, उसकी आज्ञा से मन में विपरीत संकल्प चल रहे हैं। बुद्धि में विपरीत विजन आ रहे, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। संस्कार विपरीत ही मर्ज हो रहे, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। मन बुद्धि संस्कार के स्टेटस से पता चलेगा तुम्हें कि कौन सीट पर बैठा है। बात समाप्त। इतना सा ज्ञान है, श्रीमत के संकल्प चल रहे हैं, आत्मिक विजन है, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज है, आत्मा सीट पर सेट है। सिंपल ज्ञान है, काम का इतना बड़ा कर रहे हो तुम। जरूरत नहीं ज्ञान को इतना बड़ा करने की, बहुत आसान ज्ञान है, बहुत आसान। मन मत परमत पर चल रहे हो, मायावी स्वरूप सीट पर बैठा हुआ है। श्रीमत पर चल रहे हो, आत्मा सीट पर सेट है, बैठी है। सिंपल ज्ञान है बच्चे, अति सिंपल। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति समझेगा कि बाबा क्या समझा रहा है, मूर्ख से मूर्ख। कोई कहेगा हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो बच्चे समस्याएं कहां से आई? मायावी स्वरूप सीट पर सेट है, वो समस्याएं क्रिएट करता है। शारीरिक बीमारियां क्रिएट करता है, उसका सुख उसमें है। मानसिक रोग क्रिएट करता है मन बुद्धि संस्कार के, आर्थिक बाधाएं समस्याएं निर्माण करता है, क्रिएट करता है मायावी स्वरूप। उसको उसमें आनंद आता है। पारिवारिक झगड़े लगाता है, सामाजिक बदनामी कराता है, मायावी स्वरूप तुम्हारा ही है, कोई और मायावी स्वरूप नहीं। तुम्हारे दो स्वरूप है, एक के पास विपरीत संस्कार है। समझो इन बातों को, दो स्वरूप है, एक मायावी जिसके पास विपरीत संस्कार है, एक ईश्वरीय स्वरूप। आत्मा का। जागो बच्चे, होश में आओ। कौन सीट पर बैठा है इस पर सारी यात्रा निर्भर है तुम्हारी। तुम अगर दुख दर्द में हो और किसी के पास जाकर कह रहे हो क्या करे हमारे जीवन में दुख दर्द बहुत है, तो बच्चे तुम मूर्ख हो, पागल हो। तुमने अपने मायावी स्वरूप को सीट पर बिठाया है और तुम दूसरों को जाकर कह रहे हो कि हम बहुत दुख दर्द में हैं, परेशान हैं। अभी मायावी स्वरूप और क्रिएट करेगा क्या? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मायावी स्वरूप से? वो सुख शांति क्रिएट करे क्या? तुम्हारी जीवन सुख शांति भरी करे? उसके पास वो है ही नहीं है। ये तो आत्मा के पास है सुख शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। इसलिए बच्चे अपने सीट पर सेट रहो, सितारे स्वरूप में अपने सीट पर सेट रहो। जागो, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है, दुख दर्द स्वाभाविक है, आना ही है, वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर तुम कितनी भी अमृत वेलाएं करो, नमाज शाम करो, मुरलियां पढ़ो, भट्टिया करो, मिलन करो, जो चाहे करो, टोली खाओ, वरदान पाओ, जो चाहे करो, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है तो दुख दर्द ही आएगा। समझे बच्चे? परमात्मा ने अपनी सारी लाइट और माइट भी दे दी, जितनी उसके पास है, उसके पास तो अनंत है, उतनी ही दे दी, फिर भी दुख दर्द रहेगा क्योंकि मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। जागो बच्चे, खुद सीट पर सेट हो जाओ। नींद नहीं आ रही, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। ज्यादा नींद आ रही तो भी मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। आत्मा रहे बच्चे, भूख नहीं लग रही, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। ज्यादा भूख लग रही है, मायावी स्वरूप सीट पर सेट है। आत्मा तो बैठे हैं, चैन नहीं आ रहा है, ज्यादा ही आलस से अलबेलापन में चले गए, ज्यादा चैन में चले गए, मायावी स्वरूप। लक्षण देखो बच्चे मायावी स्वरूप के। मायावी स्वरूप का एक ही काम है, दुख दर्द का निर्माण करना और कुछ नहीं। तुम उसे क्यों गाली दे रहे? तुमने उसे जैसे बनाया वैसा वो है, वो तुम्हारा ही एक स्वरूप है। द्वापर से सभी को दुख दर्द देते 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 तुम्हारा एक दुख दर्द देने वाला स्वरूप बना है। अभी उसके संस्कार क्या है? दुख दर्द देने वाले। दूसरों को नहीं दे सकते तो तुम्हें खुद को ही दे रहा है, उसका काम है देना। समझे बच्चे? दूसरों को तो तुम दुख दर्द नहीं दोगे क्योंकि तुम ज्ञानी हो, आध्यात्मिक हो, तो अभी संस्कार भी है उसके, कहीं ना कहीं देना तो पड़ेगा। दूसरों को दे नहीं सकते तो वो तुम्हें खुद को ही दे रहा है, मतलब खुद खुद को ही दे रहा है। जैसे कि वो भी परेशान, साथ में आत्मा भी परेशान और पूरा अस्तित्व भी परेशान। तुम्हारा ही मायावी स्वरूप है, तुम अपने मायावी स्वरूप के एक एक संस्कार को संकल्प से, दृढ़ संकल्प से मुक्ति दो, लाइट होता जाएगा। उपाय बता रहा हूं, अपने मायावी स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो। समझ सारे? अभी एक विधि बताता हूं, सच्चाई से करना, नाटक नहीं करना। मुझे नाटक पसंद नहीं। सच्चाई सफाई से करना, हुआ तो करना, नहीं हुआ तो कहना बाबा नहीं हुआ। आंखें बंद करके सुनो ध्यान से, सभी बच्चे करो, आंखें बंद करके अपने मायावी स्वरूप को आज्ञा दो कि मेरा मायावी स्वरूप इमर्ज हो जाए। देखो कुछ इमर्ज होता है क्या, अनुभव करो, आप सभी भी कर सकते हैं, और देखना कैसा है वो, अगर दिखता है तो उसमें क्या क्या है, ये भी अगर अनुभव होता है तो अनुभव करो। चाह रहा है, किसी का इमर्ज हुआ है, कोई बात नहीं, आपका हुआ है,
स्पेशल किसी का स्ट्रेस किसी को देखते हुए वो स्थिति है, उसकी स्थिति जैसे वैसे डाउन उसका चेहरा ऐसे स्ट्रेस
स्ट्रेस,
ओके
आपका इमर्ज हुआ, कुछ देखा, चेहरा ऐसे नहीं पर एक स्वरूप इमर्ज हो जाता है।
और डेंस था
अहंकार, कंट्रोल की ऊर्जा, गुस्सा, बहुत अच्छा, कुछ नहीं देखा, नहीं देखा।
देखते
गुस्सा हो गया,
जैसे स्पॉट देख नहीं पाए क्या है मज हो सर, उसमें बहुत सारी इच्छाएं थी, ब्लैक था मेरा इतना ही शरीर का ही था और उस सारी इच्छाएं बहुत सारी
इच्छा है।
दिखा था लेकिन कोई हमने हम इमेजिन किया था वो।
कोई बात नहीं, देखो बच्चे जब भी संकल्प करते हो ना, मेरा मायावी स्वरूप इमर्ज हो जाए, तो पहली आकृति जो सामने आती है वो आपका मायावी स्वरूप है। तुम ये मत समझो कि वो किसी सितारे के रूप में दिखेगा, कोई एक तुम्हारी प्रतिकृति आकृति दिखेगी, नहीं बच्चे ये सब नहीं समझो, कुछ भी इमर्ज हो जाए सामने वो तुम्हारा माया स्वरूप है। ऐसे नहीं कि वो तुम ज्यादा देर तक ध्यान लगाओगे और वो इमर्ज हो जाएगा, और वो इमेजिनेशन भी नहीं होगा आपका, वो रियलिटी है। जब भी आप कोई संकल्प करते हो और तत्क्षण जो अनुभूति होती है वो संकल्प की स्थिति है, वो अनुभूति है उसकी। चिंता ना करो, प्रैक्टिस करो, स्वरूप धीरे धीरे सामने इमर्ज होगा। आपको स्वरूप में कौन कौन से संस्कार पड़े ये भी अनुभव होंगे कि हाँ ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। बस एक बार पता चला ना, कुछ नहीं करना है उस संस्कार को, डर भी था वो करते करते बच्चे, जैसे एक एक इमर्ज करते करते बस उनको लाइट और माइट देनी, गोल्डन लाइट आत्मा से लाइट और माइट, और उन संस्कारों को मुक्ति देनी। जैसे एक एक संस्कार को मुक्ति देते जाओगे मायावी स्वरूप के, आपको हल्का लगेगा, और आपके मायावी स्वरूप के संस्कारों को मुक्ति आपके अलावा कोई नहीं दे सकता बच्चे। ये सदा स्मृति में रखो इस बात को, आपको मुक्ति देनी है, और उसके पहले आप इमर्ज करो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही पेशेंट हो, इसे समझो आप। ये पढ़ाई है बच्चे, ऐसे सब हवा में नहीं होता, ये ध्यान लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, शांति से आती है एकाग्रता। अगर आप अच्छे से ध्यान करते जाओ, ध्यान मना उस प्रकार से नहीं है जो भक्ति मार्ग का होता है, मना इमर्ज करते जाओ, तो थोड़े समय के बाद वो आपसे बात करना भी शुरू करेगा, थोड़े दिनों के बाद वो अपनी इच्छा भी आपको बताएगा, उसे रहना है या मुक्त होना है। और आपको जानना है ना कहाँ से शुरुआत करें, आप उसी को पूछो कि आप मुक्त होना चाहते हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए, वो आपको उपाय बताएगा। वो कहेगा पहला ये संस्कार आप मुक्त करो, क्योंकि मैंने बताया है हर किसी का मायावी स्वरूप हर किसी से बात करेगा और हर किसी को गाइड करेगा कि किस प्रकार से मैं मुक्त हो सकता हूं। वो मायावी स्वरूप ही जानता है कि जब वो बना तब पहले किस विपरीत शक्ति से बना है और लास्ट वाली विपरीत शक्ति कौन सी है, वो किस ऊर्जा से बना है। जिसको ज्ञान है मैं किससे बना हूं, उसके पास पूरा ज्ञान है मैं किससे मुक्त हो सकता हूं। इसलिए तुम्हें ये बात परमात्मा से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो बस विधि बताएगा तुम्हें, समझ है बच्चे। और एक बार वो स्वरूप मुक्त हो गया और वो खुद भी मुक्त होना चाहता है, मैं कहता हूं आपको उसकी बात मैं आपको बताता हूं, हर अस्तित्व का मायावी स्वरूप मुक्त होना चाहता है अभी, क्योंकि परमात्मा आया है तो वो भी चाहते हैं कि आत्मा का कल्याण हो जाए। और बच्चे ध्यान में रखना सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, वो जो तुम्हारा मायावी स्वरूप है ना, उसमें तुम्हारी 99.90% ऊर्जा पड़ी है। जब वो मुक्त हो जाएगा सारी ऊर्जा आत्मा को मिलेगी, सारी ऊर्जा शुद्ध पवित्र ऊर्जा, क्योंकि उसे चलने के लिए भी तो ऊर्जा लगती है। मैक्स किसी के पास 0.1 to 1% होगी, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा योगी, 24 घंटे योग करने वाला भी योगी क्यों ना हो, सिर्फ 1% ऊर्जा उसके पास है, खुद के पास, बाकी 99% ऊर्जा उस मायावी स्वरूप में है। इसलिए बच्चे वहां आपकी सारी ऊर्जा है, सारी की सारी, और वो मायावी स्वरूप के पास होने के कारण अभी उसके जो संस्कार उसी दिशा में वो लगेगी। ऐसी बात हुई कि किसी पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर दी या किसी के नाम कर दी, समझ, अभी वो मुक्त हो जाएंगे तो वापस प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही आएगी। अभी वो बच्चा कैसे भी पैसे उड़ा रहा है, उड़ा तो उड़ा रहा है दूसरों का नुकसान भी कर रहा है, पिता को ही सब संभालना पड़ता है, नाम पिता का खराब हो रहा है, प्रॉपर्टी वापस तो लेनी पड़ेगी ना। मुक्ति दो मायावी स्वरूप को, इमर्ज करो, बातें करो उससे। अब तक है ना तुम्हारी सारी यात्रा वही कराता था, मनमत वही देता है बच्चे, कैसे करते वैसे करते वैसे करते, ये करते वो कहते वो करते, इन्होंने जो कहा ना उन्होंने जो कहा ना वो करते, ये परमत सारे निर्णय वो लेता है खुद। तुम सभी श्रीमत पर चलना चाहते हो, लाइव वाले भी, पर वो मायावी स्वरूप तुम्हें, उसकी भी मजबूरी है, वो दे देता है तुम्हें मत, ऐसे करे तो वैसे करे तो, ये द्वापर से बना हुआ स्वरूप है बच्चे, कड़ा है, बहुत कड़ा है और बहुत बड़ा भी है ये स्वरूप, इसे समझो, उसे बातें करो रोज, उसे गोल्डन लाइट और माइट दो आत्मा से मुक्ति की। जागृति की। समय निकालो रोज, बस संकल्प करना है, मैं आत्मा सितारा मेरे सीट पर सेट हूं, मुझ आत्मा से परिवर्तन की गोल्डन लाइट और माइट मेरे मायावी स्वरूप में जा रही है, बस संकल्प करना। तुम इमेजिनेशन की विजुलाइजेशन की चिंता मत करो, जो दिखे सामने देखो, लाइट और माइट जा रही, देखो क्या होता है। आसान विधि बताए, परिवर्तन में सब कुछ आ जाता है, स्थापना पालना विनाश, इसमें अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी शक्ति की बात करने की जरूरत नहीं, बस उसे मुक्ति दो बच्चे, मायावी स्वरूप को, अपनी सारी पावर वापिस लो और अपना कल्याण करो। जिसने अपने मायावी स्वरूप को मुक्त किया उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण छोड़ो, उससे तो कितनों का कल्याण होगा कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास विराट शक्ति है, बस वो सारी शक्ति मायावी कर्मों में जा रही है, मायावी संकल्पों में, विचारों में, विजन में, संस्कारों में लग रही है, जा रही है, बस मुक्ति दो। भूलो मत बच्चे विधियों को, बाबा बहुत छोटी छोटी विधियां बताता है, सहज विधियां बताता है, कोई भी कर सकता है, अति मंद भी कर सकता है, ऐसी विधियां बताता है, मूर्खते मूर्ख कर सकता है, कभी भी कैसे भी कर सकते हो, ऐसी विधियां है। अब इस विधि को जरूर ट्राई करो, देखो आपके शरीर में क्या अनुभूति होती, जैसे वो गोल्डन होता जाएगा वैसे आत्मा को अपनी शक्ति महसूस होती जाएगी कि उसके पास कितनी शक्ति है, जैसे वो मुक्ति में जाता जाएगा, जाते जाते आत्मा को शक्ति देकर जाएगा उसकी वापस। एक्चुअल उसका कोई अस्तित्व है नहीं है, आप इसे समझो, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो आत्मा की ऊर्जा से ही बना है, समझ। जैसे किसी आकृति की बॉर्डर लाइन निकाल दी तो कुछ आकृति बचती है क्या? सारा वायुमंडल और आकृति एक ही हो जाती, उसी प्रकार से नाम की बॉर्डर लाइन है मायावी स्वरूप की, नाम की, वो निकल गई ना, फिर आत्मा और वो सारी ऊर्जा एक हो जाएगा, और आत्मा की प्योर ऊर्जा है वो, ऐसे नहीं कि वो मायावी ऊर्जा है, मायावी स्वरूप को भी कार्य करने के लिए प्योर ऊर्जा ही लगती है, ऐसे तो नहीं ना कि पैसे उड़ाने के लिए कोई अलग नोट बनाया सरकार ने, किसी का नुकसान करने के लिए कोई अलग नोट बनाए, नोट वही है, समझो इन बातों को, इसलिए प्योर ऊर्जा ही है वो आत्मा की, मायावी स्वरूप उसे प्रयोग में ला रहा है, हर प्रकार से मायावी बातें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, उदासी नाराजगी, बहुत ऊर्जा खर्च होती है बच्चे इसमें, बहुत ज्यादा, एक भी चिंता का विचार चलाया बहुत ऊर्जा नष्ट होती है आत्मा की, बहुत ज्यादा, एक भी दुख दर्द का विचार चलाया बहुत जाता है, बाबा कहेगा नष्ट नहीं हो किसी की भी ऊर्जा, नष्ट ना करो बच्चे ऊर्जा को, बस तुम ये विधि अपनाओ बच्चे, देखो आपकी कितनी शक्ति है, आपकी आपको कल्पना भी नहीं बच्चे, द्वापर से किसी मंदिर में गए, दर्शन भी किया है, शक्ति जमा है, एक बार राम राम बोला है, शक्ति जमा है, एक बार फूल चढ़ाया है, कितनी शक्ति जमा है बच्चे, शक्ति कितनी होती है पता है क्या भक्ति मार्ग में, कितनी शक्ति होती है भक्ति में, बस कोई स्थिति में नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है। बस एक दर्शन एक जन्म के लिए काफी है। एक बार देवी देवताओं का दर्शन किया, एक जन्म में सिर्फ एक बार मंदिर जाकर इनफ। पूरा 100 साल का जीवन सुख में जाएगा। एक फूल चढ़ाया बस एक बार बस हल्दी कुमकुम चढ़ाया है लगाया है, एक बार बस कोई चढ़ावा चढ़ाया है, पूरी जीवन सदा सुखी, धन धान्य समृद्धि सब कुछ पुत्र पौत्र, बस एक बार करने से। देवी देवता है बच्चे, वो परम महान अस्तित्व है। एक बार उनके दर्शन में, एक बार उनके सिमरण में इतनी प्राप्ति होती है। बस आज वो किसी को अनुभूति नहीं हो रही है क्योंकि कोई स्थिति में है नहीं। आपके पास द्वापर युग से कितना पुण्य जमा है, पर वो सब है कहां? मायावी स्वरूप में। वो मुक्त हो जाएगा ना, आप स्वयं हैरान हो जाओगे इतनी शक्ति आपके पास आएगी। समझ है बच्चे? तुम भले होश में हो या नहीं हो, गलती से भी मंदिर में फूल चढ़ा दिया, गलती से भी, तो भी पूरी प्राप्ति है। तुम्हें पता भी नहीं कौन से देवी कौन से देवता कौन से भगवान, फिर भी प्राप्ति। कहानी सुनिए, वो जंगल से एक भील जा रहे थे बेल पत्र बेचने के लिए, गलती से एक बेल पत्र हाथ से गिरा, जहां गिरा उस जमीन के नीचे शिवलिंग था, अगले जन्म में राजा बन गए। गलती से गिरा है, कॉन्शियसली भी नहीं चढ़ाया है, गलती से एक बेलपत्र गिरा है और अगले जन्म में राजा बन गए। समझो बच्चे, प्राप्ति भक्ति की, प्राप्ति भक्ति की शक्ति विराट है। बस कोई स्थिति में नहीं है, मूल स्थिति में, इस कारण अनुभूति नहीं हो रही है। बिना स्थिति के अनुभूति नहीं हो सकती। स्थिति में आओ और जीवन सुखी बनाओ। कौन सी स्थिति? आत्मिक स्थिति, मूल स्थिति। बच्चे विराट शक्ति है और इस ज्ञान मार्ग में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। बस आप स्थिति में नहीं, इस यूनिवर्स के या जिस यूनिवर्स में जो भी पार्ट बजा रहे, उस यूनिवर्स के शिव बाबा की एक दृष्टि इनफ है आपके सारे पाप समाप्त होने के लिए। एक दृष्टि इस ज्ञान मार्ग की ताकत है। 63 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते शिव बाबा के एक दृष्टि से। मैं तो पिक्चर में भी नहीं हूं भाई, मेरी तो बात भी नहीं करो, इसमें जाते ही नहीं टॉपिक। समझ की बात है बच्चे, मैं तो आता भी नहीं हूं। शिव बाबा को भी साधारण मत समझो बच्चों, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। बल मैं आया हूं, मैं कहता हूं मैं परमात्मा हूं, इसलिए शिव बाबा को साधारण मत समझो। समझ की बात है, बस वो स्मृति नहीं रहती किसी को उस वक्त कि किससे हम दृष्टि ले रहे हैं, कौन हमें दृष्टि दे रहे हैं। वो भावना में बह जाते सब, भावना में क्या स्मृति रहेगी, क्या जागृति रहेगी। समझ है बच्चे, अगर स्मृति रहे ना तो ये दिमाग ठिकाने पर नहीं रहेगा। एक दृष्टि के वाइब्रेशंस की एनर्जी की ताकत है वो। अगर स्मृति रहे तो, स्मृति चाहिए, इसलिए बाबा मिलन कोई खाने की बात है क्या बच्चे? बस स्मृति नहीं होती किसी को, कौन से बाबा से हम मिल रहे हैं, कौन सा बाबा, सब भाव भावनाओं में बहते जाते हैं। स्मृति रखो। शक्ति यहां बच्चों रेत की तरह है, पानी की तरह है, हवा की तरह शक्ति है। इतनी शक्ति है हर कर्म में बच्चे, ज्ञान मार्ग में भी विराट प्राप्तियां है, बस स्मृति नहीं रहती। सबको क्या लगा एक मुरली साधारण है क्या? मुरली की ताकत बच्चों आप क्या जानो, मुरली के एक शब्द की ताकत आप क्या जानो, उच्चारा किसमें है, उसकी सारी शक्ति उसमें है। बस वो स्मृति नहीं रहती पढ़ते हुए सुनते हुए, इसलिए शक्ति की अनुभूति होती नहीं। समझ की बात। पूरे कल्प के लिए मुरली का एक महावाक्य एक शब्द काफी, एक शब्द परमात्मा के मुख से उच्चारा हुआ, इस यूनिवर्स के शिव बाबा के मुख से उच्चारा हुआ एक शब्द पूरे एक कल्प के लिए काफी है। इतनी ऊर्जा उसमें है, इतनी ऊर्जा, बस उनके मुख से डायरेक्ट उच्चारा हुआ शब्द होना चाहिए, कोई भी शब्द। बच्चे साधारण नहीं है शक्तियां यहां, बस स्मृति नहीं है कि शब्द किसके हैं, वचन किसके हैं, स्मृति का खेल है बच्चे सारा। देवी देवताओं के एक दर्शन में एक जन्म सफल होता है तो आपको क्या लगता है, शिव बाबाओं के एक दर्शन में एक कल्प सफल नहीं हो सकता? समझ है बच्चे, बस वो स्मृति नहीं रहती, स्मृति रखनी पड़ती है, खेल स्मृति का है बच्चे। स्मृति रखो, स्थिति रखो, अनुभूति और प्राप्ति हो जाएगी। स्मृति, स्थिति, अनुभूति और प्राप्ति, समझ की बात है बच्चे। जागो, अपना कल्याण करो, अपने मायावी स्वरूप को मुक्त करो, जागृति आ जाएगी। तुम्हारे पास बहुत कुछ जमा है, बहुत सारी प्राप्तियां हैं, आत्मा होना ही इनफ है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। आत्मा होने से बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं। भल तन बीमार है, मन अस्वस्थ है, धन गरीबी वाला है, पारिवारिक झगड़े हैं, सामाजिक बदनामी है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, पर आत्मा हो यही काफी है। इस यूनिवर्स में तो सोल कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं अलग अलग लोकों से, अलग अलग डायमेंशन से, उन्हें क्या चाहिए? आत्मा। वो कहते आप हमें आत्मा दो, उसके बदले में आपको हम जो चाहे देने के लिए तैयार है। आपने कभी सोचा नहीं, अगर आत्मा के बदले में जो चाहे देने के लिए वो तैयार होंगे तो आत्मा कितनी वैल्यूएबल होगी, कितनी कीमती होगी। जागो बच्चों, अपने मायावी स्वरूप को मुक्ति दो, और बच्चे सारी ऊर्जा अपने पास इमर्ज करके अपना कल्याण करो। ध्यान दो, विधियां तो बहुत बताता है बाबा, कुछ तो करो। सभी का कल्याण, सभी बच्चों को परमात्मा के बाप के पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, सदा सुखी रहो, और बच्चे अपना कल्याण करते रहो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति।
रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति
ओम
शांति। मैं आत्मा वहा बाहरे मेरा भाग्य वहा बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा बाहरे स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा
ओम शांति।
मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा
ओम शांति।